ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं वीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ पंचम स्कंद अध्याय 8 भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। आज इस अध्याय के 28 नंबर श्लोक। तत्रापि हवा आत्मनः मृगत्व कारणम् भगवत आराधन समीहा अनुभावेन अनुस्मृत्य भूषम् अनुतप्यमानः आह। तत्रापि हवात्मनः मृगत्व कारणं भगवत आराधना समीया अनुभावेन अनुस्मृत्य भूषम् अनुतप्यमान आह। तत्रापि हवात्मनः मृगत्व कारणं भगवत आराधना समीहा अनुभावेन अनुस्मृत्य भूषम् अनुतप्यमानः आह। तत्रापि हवात्मनः मृगत्व कारणं भगवत आराधना समीया अनुभावेन अनुस्मृत्य भूषम् अनुतप्यमानः आह। मृग शरीर प्राप्त करने पर भी भरत महाराज अपने पूर्व जन्म की दृढ़ भक्ति के कारण उस शरीर को धारण करने का कारण जान गए थे। अपने विगत तथा वर्तमान शरीर पर विचार करते हुए वे अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। भरत महाराज के बारे में आप पिछले कई कक्षा से श्रवण करके आ रहे हैं। भरत महाराज भगवान ऋषभदेव के सबसे बड़ा पुत्र थे। भगवान ऋषभदेव के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र। 100 पुत्र में से सबसे बड़े पुत्र थे भरत महाराज। और ये संपूर्ण विश्व के एक छत्राधिपति सम्राट रहे। प्रजाओं को पालन किए। कई हजार सालों तक ये शासन करने के बाद ये धरा को पृथ्वी को उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने मौलवत राज्य के प्रजा संपत्ति रानिया पुत्र ये सभी को त्याग कर आ गए थे। आकर गंडुकी के किनारे, गंडुकी नदी नेपाल में जाकर गंडुकी नदी किनारे आज भी भरत महाराज का तपस्या स्थल व पुलस्त्य मुनि का आश्रम आज भी है। चक्रतीर्थ कहते हैं जो जाते हैं गंडुकी नदी पर, जो मुक्तिनाथ या दामोदर कुंड जाते हैं तो उस मार्ग में चल के जाने से रास्ता में आता है, आज भी है भरत महाराज के तपस्या स्थल है पुलस्त्य मुनि का आश्रम। तभी ये जाकर वहां पर गंडू के किनारे सालग्राम भगवान को पूजा करने लगे। भगवान सालग्राम साक्षात नारायण है, तो सालग्राम की पूजन करते थे और प्रत्येक दिन जाते थे जंगल से फल मूल फूल ये सब इकाठी करके, सब जो कुछ ग्रास समिधा सब कुछ इकाठी करके लाके स्वयं गंडू की नदी में प्रत्येक दिन स्नान करके ही पूजा तर्पण आदि करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो गंडू की नदी में स्नान करके क्या कर रहे थे, बैठ के गायत्री जप रहे थे। उसी समय देखे कि एक प्यासी हिरणी जो कि गर्भवती थी, उसने पानी पीने के लिए किनारे पर आ गई और पानी पी रही थी। और उसी समय सिंह की गर्जना, उसने कुछ दूर पर सिंह ने जोर से गर्जना की, इसलिए त्रस्त होकर भयभीत होकर उसी गर्भवती हिरण ने छिलंग लगा दी। गर्भवती होने के कारण उसकी बच्चे भी उसकी गर्भ से निकालकर पानी में गिर गई और हिरण आग दूसरे साइड में जाकर किसी को गुम्फा के अंदर प्रवेश करके वहीं शरीर त्याग दी। तो इसी भरत महाराज के सामने ये घटना हो रहा था और भरत महाराज ने देखे कि ये छोटे बच्चे जो हिरण शावक ने भास रहे हैं, तो उन्होंने बड़े करुणा से व कृपा से मैंने बड़े सहानुभूति के साथ उस हिरण के बच्चे को स्वस्थ में पानी से उठा लिए, आश्रम में लेके गए और क्या आस्ते आस्ते इसकी देखभाल करते रहे। सोचे कि इसका तो माता पिता कोई भी नहीं है, ये हिरण का बच्चा अभी मेरे ऊपर ही संपूर्ण निर्भरशील है। ऐसा कहते हुए जो बच्चे के प्रति आस्ते 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 उनकी आसक्ति बढ़ने लगा और भजन से मन आस्ते आस्ते हटने लगा है। इसी प्रकार कई साल बीत गए, लेकिन एक दिन हिरण ने आश्रम से कहीं चला गया, आया नहीं, डिटेल में नहीं कह रहा हूं। तो उसी से बड़े दुखी होकर सो हिरण का ही जन्म कर्म की बारे में चिंतन करते हुए और उसी में मोहित होकर अपने भजन व साधन के सब कुछ भूल गए है। तो इससे आस्ते आस्ते उनको बोकार आ गया, जो मैंने बोकार से अंतिम समय जब उनको मृत्यु के समय में उनको लग रहा था कि वो हिरण का बच्चा उनके सामने ही साइड में ही बैठा हुआ है, बैठ के उनके वो भी पश्चाताप कर रहा जैसे देख रहा, वहां हिरण का बच्चा नहीं था लेकिन वो सोच रहे ध्यान में, उन्हें ध्यान में केंद्रित है, हिरण का बच्चे को ही ध्यान कर रहे। भगवान को ध्यान छोड़ के किसके ध्यान कर रहे थे, हिरण के बच्चे का ध्यान कर रहे थे है? तो इसलिए लगता था कि उनके बाजू में ही हिरण का बच्चा बैठकर और उनकी मृत्यु सज्जा पर उनकी रो रहा था। इसी प्रकार जो शरीर त्याग रहे थे भरत महाराज ने, तभी उन्होंने किसके चिंतन कर रहे थे, तो हिरण का चिंतन करते थे। यंग व्यापी स्मरण भावम त्यजंते अंते कड़े वरम तंग तबेती कौनते सदा तत्भाव भावित है। जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए जीव देह त्यागता है वह निसंदेह उसको ही प्राप्त होता है। इसलिए भरत महाराज की क्या कौन सा शरीर मिल गया, अगला जन्म में हिरण का शरीर मिल गया। कालांजर पर्वत की श्रेणी में वहां पर एक मुर्गी की गर्भ से जन्म हुए, लेकिन इनकी विशेषता ये रहा कि पूर्व जन्म की भक्ति और यज्ञ के कारण इन्होंने पूर्व जन्म के सब कुछ कार्यकलाप को स्मरण रखने में समर्थ हुए। ये भगवान की विशेष कृपा थी, क्योंकि भगवान कहते कि मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चय सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चय। मैं ही सभी प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करता हूँ और प्रत्येक जीवात्मा के स्मरण रखना, भूल जाना, ज्ञान ये सब मुझसे ही प्राप्त होता, क्योंकि दीर्घ समय तक भक्ति किए थे लेकिन भगवान की कृपा से इनकी पूर्व जन्म को स्मरण रहा स्वल्प अपी अस्य धर्म से त्रायते महत्व, थोड़े से भी भक्ति मार्ग में कोई अग्रसर किया उसको दुर्गति प्राप्ति नहीं होता है। इसलिए भरत महाराज जब पूर्व जन्म की उनके शरीर और इस जन्म के शरीर के बारे में सोचने लगे तो पश्चाताप करने लगे। अनुतप्यमान है शब्द, जैसे श्लोक में बड़े महत्वपूर्ण शब्द है अनुतप्यमान है, बड़े पश्चाताप करते रहे। पश्चाताप करके अनुतप्यमान है, पश्चाताप करते हुए पश्चाताप करने लगे। हम कितने भी कोई कुछ गर्हित कर्म करते हैं लेकिन उसकी जो प्रायश्चित का प्रकृत में प्रकृत प्रायश्चित कैसे होता है, जो हमें गलती के लिए क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं। भरत महाराज को पूर्व जन्म के स्मरण होने के कारण वो जानते थे कि पहले जन्म में भरत महाराज थे हैं, भरत नाम नामनी राजा, तो उनको स्मरण रहा तो इसलिए इसी जन्म में कौन क्या बन गए, हिरण बन गए, हिरण के बच्चे बन गए। तो इसलिए उसी को स्मरण पश्चाताप करने लगे, मैं क्या क्या कर लिया पिछले जन्म में। इसलिए वो माँ के अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने माँ को छोड़कर उस स्थान को कलांजर पर्वत की तलहटी से वहां से निकाल के आके पूर्व जन्म में जहां पर रहते थे, कहाँ पुलस्तमन के आश्रम में गंडू के किनारे अकेले ही आ गए। वहां कर नदी के किनारे पूर्व जन्म की जैसे ही जहां साधन छोड़े थे वहीं खड़ा होकर फिर भगवान के ध्यान स्मरण करते रहे, हिरण का शरीर में भी है। इसलिए हमारा जो असली जो लक्ष्य कोई किसी भी ज्वनि में होने पर भी हमारे जैसे स्मरण रहे, किसको, भगवान को स्मरण। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते कि पशु पक्षी होई थाकी स्वर्गे बानी रे तब भक्ति रहो भक्ति बिनोद हृदय। मैं स्वर्ग में रहूँ या नर्क में रहूँ, पशु पक्षी क्यों न बन जाऊँ, लेकिन हे प्रभु मुझे एक ही प्रार्थना है, वरदान दीजिए आपकी स्मरण जैसे न चुकूँ, बस सदा जैसे आपकी स्मरण करने में समर्थ हूँ, ये वरदान मुझे चाहिए। मेरे पूर्व जन्म कर्म का निज कर्म दोषो गुणे जे जे जन्म पाई जन्मे जन्मे तब नाम गुण जन गाई। मेरे अपने प्रारब्ध के अनुसार जैसे भी कोई मेरे शरीर मिल जाए इसके लिए मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन ये प्रभु आपकी गुणगान जैसे करते रहूँ किसी भी शरीर में रहूँ। जटायु कौन सा शरीर में था, गिद्ध के शरीर में भी रहकर भगवान रामचंद्र जी की भजन किया है, फाइटिंग किया भगवान रामचंद्र जी के लिए, युद्ध किया किसके साथ, रावण के साथ, स्वयं का जीवन को संकट में डालकर भी है। तो ऐसा है जिसके सत्कार स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने किए, कोई गीत के शरीर का कोई गीत शरीर देखता उसका सत्कार कोई भगवान के हाथ से हुआ, कितनी भाग्यवान है, हैं? स्वयं रामचंद्र जी ने जाके उसके अंतिम संस्कार किए हैं। पक्षी की जोनी में तो गुरुड़ जी है, बंदर की जोनी में हनुमान जी है, और भालू की जोनी में कौन है, जामवान जी है। तो उनके क्या दुर्गति, फिर इसी शरीर का कौवा को कोई आदर करता है, कौया की जोनी में काक भुजंडी है, राम जी की महान भक्त है। तो इसलिए ये पशु पक्षी व मनुष्य इसमें से कुछ नहीं, मेन बात है कि हमको भजन करना चाहिए किसी भी, लेकिन साधारणतः तो किसी पशु पक्षी की जोनी में भजन करना संभव नहीं है। इसलिए ये मनुष्य दुर्लभ मानुषं जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थदम, प्रहलाद महाराज कहते कि ये दुर्लभ, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, यदि अन्य शरीर के समान ये भी क्षणस्थाई है, भाई इसका भी नाशवान है शरीर, लेकिन फिर भी इसका कुछ विशेष अर्थ है। इसी मनुष्य शरीर में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवत, ये भागवत धर्म की शिक्षा है। कौमार अवस्था से 5 साल उम्र से ही भगवान की भक्ति शुरू कर देना चाहिए। विद्या दो प्रकार की होते हैं, आध्यात्मिक विद्या और भौतिक विद्या। अभी 5 साल उम्र में कौन सा विद्या पढ़ने के लिए से भेज जाते हैं स्कूल, पिताजी माताजी बच्चों को छोड़ देना, कौन सा विद्या पढ़ने, भौतिक विद्या। अब भौतिक विद्या नहीं, बस भागवत कहते कि नहीं 5 साल उम्र में आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत करो। आध्यात्म विद्या विद्यानां, भगवान कहते कि मैं कौन सा विद्या हूं, आध्यात्म विद्या। आध्यात्मिक विद्या के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त करते हैं और भौतिक विद्या के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होता है। हैं, जिस भौतिक विद्या को प्राप्त करके इंद्रिय तृप्ति के साधन में फंसकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम घूमते रहते। तो इसलिए मनुष्य जन्म मिला है भगवान की भजन करने के लिए। हैं, मनुष्य जन्म ऐसे नहीं कि आहार निद्रा भय मैथुन जैसे दूसरे सब किसी सभी जोनी में लोग करते हैं, हम भी ऐसे करते रहे। इसी के लिए मनुष्य जन्म है। इसलिए कहते कि आहार निद्रा भय मैथुन अंश सामान्य पशु भी नराणम धर्म तु एक अधिक विशेष धर्मेण ही ना पशु भी समान। आहार निद्रा भय मैथुन सबके पास है, पशु भी करते, किसी 84 लाख जोनी में किसी भी पशु पक्षी शरीर रूप सब इसमें लगे हुए। तो मनुष्य जीवन का क्या विशेषता है? मेन इज ए रेशनल एनिमल, मनुष्य का एक चिंतन करने की शक्ति है, इसलिए अच्छा बुरा विचार कर सकता है। इसलिए मनुष्य जोनी में हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान की चिंतन कर सकते, भगवान की पूजन कर सकते, नवधा भक्ति को अपना सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति को हम इसी जोनी मनुष्य शरीर में ही अपना सकते हैं। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज भी कहते कि तत्प्रयास न कर्तव्यं जतः आयु वयः परम न तथा विन्दते खेमं मुकुंद चरणाम्भुजम्। ऐसे प्रयास करके इंद्रिय तृप्ति के साधन में लगे ले ये शरीर को मस्त में ये मनुष्य जन्म को वृथा नष्ट मत करो, वृथा मत गुवाओ, ऐसे प्रयास नहीं करना। तब प्रयास न कर्तव्य, ये आयु बड़े मूल्यवान है। जतः आयु वय परम, ये मनुष्य जीवन का अवधि, ये जो परमायु ये बहुत मूल्यवान समय है। ये शरीर किसके लिए मिला है? मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान मुकुंद के चरण कमल में भक्ति करने के लिए है, इसको इसी प्रकार उपयोग करना चाहिए। लेकिन भरत महाराज के तो ऐसे मनुष्य शरीर तो मिला था और भजन भी किए, लेकिन यहां तक कि उनकी जो भजन का स्तर था कौन सा स्तर था? भाव भक्ति में थे है? थोड़े से बाकी था, प्रेम प्राप्त करी भगवान बस है। फिर भी उन्होंने थोड़ा सा असत्संग किए, उसी से उनकी पतन हो गया। इसलिए कहते कि भरत महाराज के पतन के जो मुख्य कारण है कि उन सब उनके पास में कोई संत नहीं था, अकेले रहते थे। यदि एक संत और होता था उनके साथ में साधु दोस्त रहते थे, वो दंडता था क्या कर रहा था? अरे पूरा साम्राज्य के संपूर्ण विश्व के सम्राट की पद छोड़कर तो आया इधर भजन करने के लिए, क्या कर रहा था? तुरंत उसको दांत के उनको सुधार देता है। इनके पास में कोई बोलने वाला नहीं था, इसलिए भजन एकांत में करना बड़ा रिस्क है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि सतसंग छाड़ी कहीनु असते विलास, सही लागे बांधी लय कर्मबंध भास। कर्मबंधन में क्यों फंस गया? क्यों सत्संग को छोड़ के असत का संग किया है? भरत महाराज साधु संघ के बदल में किसका संग करने लगे? हिरण के बच्चे के संग करने लगे। इसलिए साधुओं की संग में रहना सदा कहा जाता है। तादेर चरण से भी भक्त सने वास, जनमे है यही अभिलाष। भक्तों की संगति में रहकर भक्तों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। भक्ति का अर्थ ही सेवा। इसलिए भगवान की सेवा में भगवान जितनी प्रसन्न होते हैं उससे अधिक प्रसन्न होते हैं यदि हम संतों की सेवा करते हैं, साधु सेवा से अधिक प्रसन्न होते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर महान आचार्य कहते कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैसे के कौन उद्धार हुआ? वैष्णव की सेवा किए बिना इस संसार से कौन उद्धार होगी गया भगवत धाम पहुंचे, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। इसलिए सदा भक्तों के साथ में रहकर भक्तों की सेवा करना चाहिए। चाहिए भगवान ने भरत महाराज पूर्व जन्म की सुकृति के बा पुण्य के फल पर उनको पूर्व जन्म के इतिहास सब याद रहा। और आपको याद है हमें पूर्व जन्म का इतिहास याद नहीं है, हैं? लेकिन फिर भी हमको तो याद है कि हम कौन सा शरीर में है, मनुष्य शरीर में। तो इसलिए हमारा क्या करते हैं हमको पता है ना, इतना पता है। भरत महाराज जो पता लगा तो वो पश्चाताप करने लगे, रोने, खड़ा होकर ऐसे हिरणी के शरीर में रो 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 कि वहीं शरीर को त्याग दिए, उसी गंडू के जल में शरीर उनका भस गई। तो फिर अगला जन्म हो गया, कौन सा, जड़ भरत के रूप में आए। लेकिन हमारा इतना तो हमको पता है, हम कुछ भी हो पूर्व जन्म कैसा था नजर हमको याद न हो, न रहने पर भी इस शरीर में हमको कैसा मिला, मनुष्य का शरीर मिला। तो मनुष्य शरीर किसके लिए है, अब भागवत पढ़ के तो समझ रहे हैं ना, किसके लिए मनुष्य शरीर है, मानव ने मनुष्य जन्म लभिया राधा कृष्ण नाभ जिया जानिया सुनिया विष खाइनु हरि हरि विफले जन्म गुआइनु। मनुष्य जन्म प्राप्त करके यदि कोई भगवान की भजन नहीं कर रहा, तो जान बुझ कर क्या कर रहा है, जहर खा रहा है, जान बुझ कर। आत्माघाती उसी को कहते हैं, इस उपनिषद कहते हैं कि ये आत्माघाती है, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो भगवान की भजन नहीं करता वही प्रकृति में आत्मा का हनन करने वाला है, वही आत्मा को हनन करता है। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है भगवान की भजन करने के लिए, इसके लिए पश्चात, जैसे हिरण शरीर प्राप्त करके हम कैसे प्राप्त कर लिए, उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं कौन, भरत महाराज। और हिरण शरीर में रहकर भी वो भक्ति करने के लिए सावधान हो गए, और अभी किसी के साथ मिलने नहीं, अगला जन्म में जड़ भरत के रूप में भी पूरा विरक्त रहे। तो इसी इतिहास को पढ़ के हमारे हम भी ऐसे पश्चाताप करना चाहिए। कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे बड़ा जो आवश्यक है भजन, हमको पश्चाताप होना चाहिए। हम जो कर्म सब करके क्या क्या करके आए हैं, उसके लिए पश्चाताप करते हुए भगवान के शरण में जाना, अनन्य भक्ति करना, उसमें लग जाना हैं। भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए हमको सिखाते हैं आचार्य लोग कैसे प्रार्थना करना चाहिए। हमारा जो अच्छे गुण है, नहीं हमारा जो सब गुण है, हमारा जो अच्छा बात, जो अच्छा कुछ किए, कुछ सुकृति किए, पुण्य किए, उसी को एडवर्टाइज करना। और जो बुरे हमारे पास है, जो कुछ गंदे काम किए, कुछ बुरे काम किए, उसको क्या करना, पाप को छुपाना और पुण्य को खुलना, ठीक है, है? शास्त्र कहता है कि यदि कोई पुण्य करके इसको एडवर्टाइज करता है उसका पुण्य फल नष्ट हो जाता है, है? और यदि कोई पाप करता है, पाप कर्म को साधुओं के बीच में खुलता है, उसकी पाप के कर्म का फल नष्ट हो जाता है, हैं? लेकिन हम क्या करते, कुछ अच्छा करेंगे तो उसी को एडवर्टाइज करेंगे, जो बुरे काम को छुपा के रखें। बुरा को कैसे बोलेंगे दूसरे, हम क्या क्या किए थे, हैं? हमारे रिकॉर्ड में पहले जीवन में क्या कैसे आई, इस जन्म में कहा क्या कैसे बुरे कर्म करके आए, तो उसको नहीं बोलते हैं, बोलते उसको नहीं, अच्छा हैं? अच्छा को एडवर्टाइज करते हैं। मैं एकादशी किया हूँ, निर्जल किया हूँ, तो उसको 50-100 लोगों को बताऊंगा, हैं? मैं एकादशी बड़ा निर्जल किया हूँ। यदि कोई किसी को पता नहीं लगा कि मैं एकादशी किया हूँ, बोला दूसरे को तो पता नहीं, मैंने रखा पूरा निर्जल था, लोगों को पता चलना चाहिए ना। दूसरा दिन मैं कुछ बहाना करके भी किसी देखेगा तो बोलेगा मेरा आज बहुत वीक लगता है, पूछेगा क्यों वीक लगता है, मैं कान में निर्जल किया था, निर्जल एकादशी किया था। तो हमारा ये स्वभाव है, अब पुण्य जो करता है, पुण्य करके जो कुछ सुकृति करके इसको एडवर्टाइज करता है, उस सुकृति का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति को हम जानबूझकर उसकी सुकृति नष्ट करना चाहते हैं तो उसके एडवर्टाइजमेंट करूं, है? इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, गुप्त दान करते हैं, गुप्त देते हैं, उसको अनाउंस नहीं करते, गुप्त देने से बस कोई पता नहीं लगे। और ये एडवर्टाइज करेगा, जब उसको कुछ दे रहा है, आपको सुकृति कर रहा है, उसके एडवर्टाइज करने से उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति दिया है हमारे मंदिर में 2 करोड़ रुपया दिया है, क्या भगवान राधा श्याम सुंदर के राजभोग चलते रहे, तो इसका सुकृति, इसका डेली अनाउंसमेंट हो रहा है, उसका सुकृति को हम नष्ट कर रहे हैं। बेचारा वो दान दे तो उसको डेली एडवर्टाइज कर करके उसका जो पुण्य है, पुण्य था, उसका पुण्य को सारा नष्ट कर रहे। ये पाप कर्म करते हैं तो पाप कर्म को क्या करना चाहिए, इसी को खुलना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि गाते भजन क्या, हमार जीवन सदा पापेर त नाही क पुण्य रेस परे रे उद्वेग दिया छी जे कत दिया छी जीवे रे क्लेश निज सुख लागी पापे नाही डरी ए दया ही न स्वार्थ पर। भजन कैसे आचार्य सिखा रहे कैसे गाना भजन, अपना पाप को खोलो वह बाहर, बाहर से निकालो बाहर है? बोलो मैं कैसा हूं, देखो मेरे व्यक्ति कैसा हूं, हम ही तो दुर्जन सदा कामे रत किछु नाही मोर गुण गोपीनाथ, हम ही तो दुर्जन अति दुष्ट, मेरे पास में इतने सारे बदगुण भरा हुआ है, कैसे इसके सुधार होगा। सकल प्रचेष्टा होइल विफल एखन भरोसा तुम्ही, असहाय समक्ष जो हम रोते रोएंगे भगवान के सामने है, हमारे पापों को चिंतन करके ही पश्चाताप करना, भगवान के चरण में रोना, इससे हमारा कल्याण होता है, उसी से हमारा सुधार होता है, उसी से हम भगवान को प्राप्त भक्ति करने में समर्थ होते हैं। भरत महाराज ने पश्चाताप कर रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, ऐसे पश्चाताप हमारे मन में होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए। हमारे जो कमियां हैं, कितनी कमी, ऐसे कोई भी नहीं कि यहाँ पर सब लिबरेटेड सोल बैठे हैं, सब लिबरेटेड सोल है, हम सब लिबरेटेड सोल। आप लोग में कोई सोच रहा है कोई लिबरेटेड सोल है, हाथ उठाओ है, बहुत महान है, लिबरेट मुक्तात्मा है। कोई मुक्तात्मा नहीं है तो फिर भरत महाराज तो एक प्रकार मुक्तात्मा ही थे, लेकिन किसी ने थोड़ा सा दोष में, लेकिन फिर भी पश्चाताप कर रहे, हिरण का शरीर में खड़ा होकर रो रो के फिर शरीर को त्यागे हैं। तो जब तक हमको रोना नहीं आएगा, पश्चाताप नहीं होगा, आंख से अश्रु नहीं गिरेगा, तब तक भक्ति कहां से शुभारंभ होने वाला है, हैं? शुभारंभ होने वाला कुछ नहीं होने वाला। हम कह रहे हमारे बदगुण को खुल रहे हैं, कहता कोई मेरे मैं ऐसे ऐसा हूं, मेरे ऐसे व्यतीत तो मेरे मन में इतने गंदे चीज है, मैं ऐसे बुरा आदमी हूं, दुष्ट हूं, ऐसे कोई कहता है? भक्ति विनोद ठाकुर सिखा रहे कैसे कहना है, हमारा जीवन सदा पापे रहो तो, आप तो कहोगे हमारा जीवन सदा पुण्य रहता है। भक्ति विनोद ठाकुर महान आचार्य परमहंस ठाकुर कह रहे कि हमारा जीवन सदा पापे रहत नहीं तो पुण्य र पर सुखे दुखी पर दुखे सुखी, ये हमारा स्वभाव। अभी चल के जाते जाते कहीं बारिश हो गया, एक पैर किसका फिसल गया, वो गिर गया, तुरंत क्या रिएक्शन होगा, जितने हो रहेगा ना साथ में सबको हंसी आ जाएगा, तुरंत ही हंसी आ जाएगा, क्योंकि हमारा स्वभाव बना हुआ है। भगवान को प्राप्त करने के लिए पश्चाताप करना जरूरी है, हमारे कर्मों को, हमारे दुष्ट बुद्धि कितने लोगों को कितना कष्ट दिए हैं, कितने हमारे जो पहले से कर्म करके आए हैं, तो इसको पश्चाताप, इसको स्मरण करके पश्चाताप करना चाहिए, साधुओं के सामने दिल को खोलना चाहिए, मैं ऐसा ऐसा करके आया हूं, कैसे मेरी सुधार होगा। कोई साधारण हमारे शरीर में कुछ रोग हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को यदि आपका क्या बीमारी है ठीक ठीक से पूरा बताओगे नहीं, मेडिसिन सही मिलेगा आपको, नहीं मिलने वाला। आप जैसे बोलोगे आप बोलने का मुझे मेडिसिन मिलेगा है, अब वो फिर आपका व्याधि को ठीक नहीं करेगा। इसी प्रकार यदि हम आध्यात्मिक गुरु बा संतों के पास जाते हैं, दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु जो कि संत जो भागवत धर्म को जानते हैं, उनके पास जाते हैं, संतों के पास जाकर क्या करना चाहिए, मैं कितनी माला अच्छा जप कर रहा हूं, कितना निर्जला एकादशी किया हूं, कार्तिक में क्या क्या सब पुण्य अपने हम पहले जाके हमारा सब अच्छा गुण को बताते, संतों के पास में जाके हमारा कमियां को बताना चाहिए, मेरे पास में क्या क्या कमियां है, इसके सुधार कैसे होगा है? ये बोलेंगे तो रो रो कर बोलेंगे तो फिर संत ने हमको बताएगा हाँ कैसे दूर होगा, इसकी मेडिसिन बताए कैसे हमारा जो प्रवृत्ति बना हुआ है, तो उसके कैसे दूर होगा, काम क्रोध लोभ ये सब जो शत्रु हमको घेर के रखे हैं इनसे कैसे मुक्त होना उपाय बताएगा, वो बताएगा हमारा स्थिति को देखकर संत बताएंगे कैसे इससे मुक्त होना। तो हम यदि इसको छुपा के रखते रहेंगे पश्चाताप नहीं करेंगे हमारा दुष्कृति के लिए, हमें जो जो कर्म करके आए हैं उसका पश्चाताप नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे उद्धार होंगे, संसार से उद्धार होने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमारा कमियों को खोलना चाहिए, पाप को खोलना चाहिए और पुण्य को छुपा के रखना चाहिए। पुण्य को नहीं बोलता अपनी भजन तथा न कही भी जथा तथा, नरोत्तमदास ठाकुर के आप कैसे भजन किया है क्या कर रहे हो, इसको जथा तथा हर जगह पब्लिक में एडवर्टाइज मत करो, इसको छुपा के रखो। हमारे बुराई की बार आपने जो हमारे पास जो कमियां हैं जो बुराई काम करते हैं तो उसी को कैसे उसी से कैसे मुक्त होंगे, ये जो अभ्यास से बुरा अभ्यास से कैसे मुक्त होंगे उसकी उसी का चिंतन करके बा उसी को ठीक से सीरियसली सोच सोच के पश्चाताप करके ही साधुओं के पास में रो रो कर कहना चाहिए मैं कैसे मुक्त होऊंगा, मेरे पास में ऐसा ही सब कमियां है, मेरे सुधार कैसे होगा। साधु दयामय, साधु बड़े दयालु होते हैं, फिर वो आपको उपाय भी कहेंगे इसके साथ आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे, इसको कृष्ण को हमारा प्रार्थना सुन, बद्धजीव की प्रार्थना कृष्ण नहीं सुनने वाले हैं क्योंकि चिट्टर है वो, बद्धजीव आज कुछ बोलेगा काल और कुछ कमियां हमारे पास है, धोखा देने की प्रवृत्ति है हमारे पास में, त्रुटि करने का प्रवृत्ति है, माया के द्वारा मोहित होने का प्रवृत्ति है, हमारा इंद्रिया अपूर्ण है, ऐसे बद्ध जीव का प्रार्थना कैसे कृष्ण सुनेंगे, जानते ही आज कुछ बोला काल को फिर बदल देगा। लेकिन कृष्ण के शुद्ध भक्तों की प्रार्थना को भगवान सुनते हैं, इसलिए जब किसी उनके शुद्ध भक्त हमारे प्रति करुणा की भावना पोषण करके हमारे लिए प्रार्थना करेंगे कृष्ण को, अवश्य कृष्ण उनकी सुनेंगे। इसलिए सदगुरु ढूंढते हैं, उनके शरण में आते हैं, लेकिन ये सदगुरु के पास में आके भी कपट करेंगे, सच परफेक्ट क्या है बताएंगे नहीं और कुछ बताएंगे हमारा तो फिर हमारा सुधार होने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए रोना पश्चाताप करना अनुतप्यमान है, अनुताप करना चाहिए, जो भरत महाराज अनुताप कर रहे हैं, ये श्लोक में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शब्द वही है, कौन सा अनुतप्यमान। रोना नहीं आया था आंख से अश्रु नहीं गिरा, भरत महाराज हरिण का शरीर में खड़ा होकर रो रहे थे, आंख से अश्रु की धारा बह रहा था, तभी तो उनकी उद्धार हो गया है। अगले जन्म में जड़ भरत के रूप में ब्राह्मण परिवार में आए फिर उद्धार हो गए, तो हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य से मनुष्य शरीर प्राप्त किए तो राधा कृष्ण की भजन करना चाहिए, इस शरीर में हमारा जो कमियां है इसको खोलना चाहिए, सुधार करके फिर अभी जो हम भजन कर रहे हैं सभी अपराध के स्तर पर है, नाम अपराध के स्तर पर है, नाम भजन कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है, अभी से अपराध के स्तर में हो रहे हैं क्योंकि हम आंख से एक बूंद भी पानी नहीं बोल रहा, बोल रहा किसकी, जो हरे कृष्ण जप कर रहा हमारे आंख से पानी गिर रहा है। भागवत कहते हैं कि जो हरे कृष्ण मंत्र वह हरे कृष्ण बोल के भगवान के नाम लेकर यदि आंख से पानी नहीं गिर रहा है, उसका जो हृदय है कैसे बना हुआ है, स्टील फ्रेम्ड है, इस्पात से बना हुआ है, इसे पिघलता नहीं है कुछ नहीं है, जिसके हृदय साफ है वो तो एक बार कृष्ण कहते ही आंख से अश्रु टपकेगा, आंख से अश्रु बहेगा, नयनाद गलदश्रु धारया, बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितं बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति, कब इस दिन आएगा मेरी, मैं कृष्ण गोविंद कहते ही आंख से अश्रुओं की धारा बहेगा, मेरे वाणी गदगद हो जाएगा, शरीर रोमांचित हो जाएगा, पुलकित हो जाएगा, कब आएगा उस दिन, भरत महाराज के उस दिन आ गया, हिरण का शरीर में भी इस दिन आया था, हिरण का शरीर में खड़ा होकर भी भगवान के नाम लेकर रो रहे थे, उनके शरीर पुलकित रोमांचित हो रहा था, तो हमारा शरीर मनुष्य शरीर में रहकर भी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सोलह माला कैसे कंप्लीट होना, बस टांग दो हो गया कोटा खत्म है। तो इसलिए ये स्थिति जब तक नहीं आएगी, हमारा आंख से अश्रु नहीं बहता भगवान के नाम लेकर भजन करने भजन करके, तो कहां से कृष्ण मिलेंगे? ऐसे कृष्ण मिल जाएंगे? मनुष्याणां सहस्रेशु कश्चित जतति सिद्ध है जतताना सिद्धानाम कश्चित मांग व्यती तत्व है। ऐसे कितने करोड़ों लोगों के लोक में कोई एक कृष्ण भक्त बनता है? कितने ऐसे मैंने इंडिया में 125 करोड़ लोग में कितने लोग कृष्ण के बारे में, आध्यात्मिक जीवन बारे में भी सोचते हैं, आत्मा शरीर क्या है इनको भी पता नहीं, आत्मा क्या है शरीर क्या है। कुछ लोग इसमें सोच रहे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये जानने पर भी लक्ष्य क्या जीवन का, किसको कई लोग को पता नहीं है। कोई सोचता है कि ब्रह्म में लीन हो जाना लक्ष्य है, कोई बोलता है कि जोगी नहीं परमात्मा में है, परमात्मा प्राप्त परमात्मा की भजन करना, कोई कहता कि नहीं नहीं क्या करना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं नवधा भक्ति में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है। कितने लोगों के कितनी प्रकार की चिंतन है। इसलिए सुदुर्लभ कृष्ण भक्त कोटि स्वपी महा मुनि, करोड़ों में एक कोई भक्त बनता, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए हम जिसको पश्चाताप नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं, कहां से कृष्ण मिल जाएंगे? हैं मिले? इसलिए ओडिशा में भुवनेश्वर में जो गौर गोविंद महाराज रहते थे, कहते थे कि आई हैव टू अपने क्राइंग स्कूल, मैं एक रोने का स्कूल खोलूंगा ये बौद्ध जीवों को सिखाने के लिए। किसके लिए रोना? कृष्ण के लिए रोना। कृष्ण के लिए कैसे रोना है तो सिखाएंगे, ट्रेंड अप नहीं होंगे तो कैसे मिलेगा है? हो सकता है कि पहले शुरू में हम ऐसे ही जो रोते पूरा प्रैक्टिकल मैंने स्वतः स्फूर्त भाव से नहीं आ रहा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको भी। उड़ीसा बंगाल में देखे कोई जो शादी होता है, शादी के पहले लड़की जब जाता है अपने ससुराल में जाने वाला शादी के बाद, शादी का दो तीन महीना पहले कि पांच महीना पहले जो शादी रेडी हो गया पूरा फिक्स हो गया, तो फिर वो लड़की को सिखाते जाते हैं। क्या सिखाते हैं? सिखाते ना कैसे रोना है, माँ को पकड़ के कैसे रोना, क्या क्या बोलना, पिताजी को पकड़ के क्या क्या रो के क्या क्या बोलना, भाभी को पकड़ के रो रो के क्या बोलना, भाई को पकड़ के रोना, सो सिखाया जाता है रोना है। अरे संसार में ऐसे ही रोना सिखाया जा रहा था, भगवान के लिए जो रो सिखाया जाएगा क्यों नहीं सीखोगे? सीखना चाहिए भगवान को कैसे रोना है कि हम उनसे बिछोड़ गए कई दिनों से, ये असली माता पिता वही है, हमारा माता पिता सब कुछ संबंध उन्हीं के साथ, हमारा असली संबंध कृष्ण के साथ। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि जनक जननी दैत तनय प्रभु गुरु पति तुह सर्वमय, भगवान को ऐसे जानते हुए कि हमारा प्रकृति में मित्र कौन है, माता पिता कौन है, इनको जानते हुए जब हम उनसे बिछोड़ गए कई युग युग से, अब उसको जब सीरियसली पर आप चिंतन करके रोना शुरू करेंगे तभी फिर हम भगवत धाम जाने में क्वालिफाइड बनेंगे। जो रोता है बच्चा तभी माँ कहीं भी होता आ जाता है लेके जाता है। अभी तो अच्छा है यहां जो माया में खेल रहे हैं, ये माया के शरीर पांचभूत का शरीर में रह के बस यहाँ खेल रहे तो पिताजी माने बोले ठीक है खेलने दो उसको है? कैसे भगवत धाम जाओगे? जब तक आंख से बस अश्रु नहीं बहा भगवान के लिए हम रोना शुरू नहीं किए कैसे भगवान प्राप्त हो जाएंगे है? प्रैक्टिस करना चाहिए रोना कैसे रोना किसके लिए, एकांत में सोचना चाहिए अरे मैं क्या कर रहा हूं, मेरा घर कहाँ है, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, अभी मैं 50 साल के बाद 55 साल का हो गया तो इसका पहले कहां था, और 15-20 साल के बाद जाऊंगा कहां है, कहां से आया कहां जाता, किस कुछ इसको थोड़ा कोई सोचता ही नहीं, चल रहा आराम से गाड़ी है तो कैसे भगवान प्राप्त होंगे? इस संसार में कोई किसी का है? आया अकेला और जाएगा अकेला, कुछ लाया था ना, कुछ लेके जाएगा, लाया कुछ, कुछ नहीं आया, कुछ लेके नहीं ऐसे ही आया है, आया था तो क्या करता था, हाथ ऐसे मुट्ठी करके आया, मुट्ठी करी बच्चे आए ऐसे मुट्ठी बांध कर आए बंदे हाथ उसे जाएगा, आया जाए कुछ लेगा नहीं कुछ है, थोड़ा थोड़ा सोचो भाई क्या कर रहे, क्यों आया इधर है, अरे इससे कैसे क्यों, ये जो मर्त्य लोग है और दुखालयम असाशतम, भगवान कहे कि ये मर्त्य लोग जो है ये दुख का घर है और ये शाश्वत नहीं है, हमारा बॉडी से ये शरीर भी शाश्वत है नहीं तो संसार भी शाश्वत है। उसको थोड़ा सोचो, दुखालयम अश्वासतम अनित्य असुख लोकम, यहां सुख नहीं मिलने वाला है। प्रयास कितने भी कर लो यह सुख मिलेगा, यहां नहीं सुख नहीं मिलने वाला। हम सोचते हैं कि लोग मैं सुखी बन जाऊंगा, मेरा ये आशा पूर्ण हो जाएगी तो मैं सुखी बन जाऊंगा, कभी सुख नहीं मिलने वाला है। हैं? दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। हैं? प्रभुपाद जी कहा करते एक लेक्चर में बोलते कि दिल्ली के लड्डू जो खाता वो भी पछताता है, जो नहीं खाया वो भी पछताता है। दिल्ली के लड्डू क्या है? इंद्रिय तृप्ति के साधन, विशेष रूप में स्त्री और धन। स्त्री के लिए पुरुष माया होता है, पुरुष के लिए एक स्त्री माया होता है। हमारा असली काम भगवान को भजन करना, लेकिन स्त्री के लिए स्त्री देखता सुंदर लड़का देखता तो उसको शादी करना चाहता, उसको उपभोग करने की भावना रहता, और लड़का कोई लड़की देखता तो उसका पीछे पड़ जाता। और धन यदि कुछ हो गया, सोचते मेरे पास करोड़ों रुपया हो जाएगा, मैं घर बना लूंगा, शादी कर लूंगा, ये करूंगा, बहुत कुछ प्लान करता है। लेकिन जिसको जिसके पास में सब है, बहुत धन है, सुंदर स्त्री है, मकान है, सब कुछ है, वो सुखी रहता है। उसको जाके इंटरव्यू करो, वो बोलेगा कितने सब समस्या में फंसा हुआ है। और जिसके पास नहीं है, ब्रह्मचारी है, किसके घर में गया भोग कीर्तन करने बा कुछ प्रोग्राम करने, देखा कि अच्छा मकान है, अरे उसके घर के सामने VW कार ने क्या BMW कार खड़ा है, इसका स्त्री इतनी सुंदर है, इतने मकान कितने दिखे, मेरे पास ऐसे ही होता तो मैं सुखी हो जाता। जिसके पास है वो भी सुखी नहीं रहता, वो भी दुखी है, और जिसके पास नहीं है वो भी सोचता मुझे मिल जाए तो। ऐसे ही कहते दिल्ली के लड्डू, संसार के इंद्रिय तृप्ति के साधन। जिसके पास है वो भी दुखी रहता, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी होता। इसलिए यहां रहकर हम सुख की कभी सुखी नहीं बन सकते। इसलिए बैक टू गॉडहेड, जद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परम मम, उस परम धाम को जाने के लिए है मार्ग, जैसे आचार्य लोग ने हमें बताए उसी मार्ग को अनुसरण करना है, पश्चाताप करना शुरू करो, जो कि हमारा पूर्व जन्म में कुछ इसी जन्म में जो कुछ करके आए हैं, कम से कम ये तो स्मरण है। भरत महाराज को पूर्व जन्म स्मरण था, आपको पूर्व जन्म नहीं स्मरण होने पर भी इसी जन्म में क्या क्या करके आए उसके उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए पश्चाताप करना चाहिए, पाप को खोलना और पुण्य को छुपाना है। ये जब तक नहीं करेंगे भक्ति कहां से प्रारंभ करेंगे है? जब तक हमारे पास में बद्धजीव का लक्षण समाप्त नहीं हुआ, भक्ति की शुभारंभ नहीं होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समह सर्वेशु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम, भक्ति प्राप्त करने के लिए ये गुण है, ये होना चाहिए, तभी से भक्ति शुरुआत होती है ब्रह्मभूत स्तर से है? भौतिक इच्छाएं समाप्त होती है, भक्ति ऐसे थोड़ी शुरुआत शुभारंभ होता है। इसका पहले सुकृतिवान होते हैं चार प्रकार के, अर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी है, सुकृतिवान चतुर्विध भजते मा जना सुकृति नो, ये सुकृतिवान है, इनको भक्त नहीं कहा गया। भक्त जो होगा तो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव संत, अन्य अभिलाषित शून्य, इसको भक्त कहते। इसलिए अभी हम कम से कम भक्त प्राय अभी कुछ कभी ना किसी कारण से भगवान के शरण में आए हैं, चाहे आर्त अर्थार्थी होकर बाकी जिज्ञासु होकर आए शरण में तो, लेकिन भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए अभी मार्ग हैं सीखने के लिए, इसका इसके लिए बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, आपको सिखाने के लिए हैं किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति की भावनामृत को त्याग के किसको अपनाना, कृष्ण भावनामृत को कैसे अपनाना है। तो इसलिए ये सीखना भरत महाराज के आचरण से, जब आ गए हिरण का शरीर में खड़े होकर रोते रहे पश्चाताप करते रहे अनुतप्यमान, पूर्व जन्म सारे कृत्य को पश्चाताप करते हुए रोते 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 रहे खड़े होकर, रो रो कर शरीर को त्याग दी। तो इसी प्रकार हमें भी पश्चाताप करना चाहिए, हमारे जो कुछ बुरा कर्म करते पाप को खोलना चाहिए, साधु वैद्य के पास में, गुरु वैष्णव के पास में, हमारे अंतकरण के जो पाप को खोल के फिर उसके मेडिसिन लेना चाहिए, और भगवान को स्मरण करना जब तक आंख से अश्रु नहीं बहा तक कहां से भगवान के स्मरण हो रहा है। ठीक है, ये प्रश्न है। हाँ ऐसा कोई आचार्य लोग ने अपना टीका में कोई नहीं लिखा है? वही व्यक्ति अपना बलता है, लेकिन ऐसा कोई टीका तो कोई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बा श्रीधर स्वामी जितने बड़ा प्रामाणिक टीकाकार है वो सो के कोई लिखा नहीं कि शेर नृसिंह देवता ये था। कोई कथाकार अपने स्पेकुलेशन करता है, लेकिन फिर भी इतना तो हम पता चलता है कि भरत महाराज कोई बद्ध जीव नहीं थे। भगवान कभी कभी किसी मुक्तात्मा को भी उपयोग करते हैं बद्ध जीव को सिखाने के लिए। भरत महाराज भाव के स्तर पर युधिष्ठिर महाराज व पांडव लोग ये सब कोई ऐसे नहीं थे, सब मुक्तात्मा है। लेकिन ऐसे ही तो जीव गोस्वामी एक दूसरे से कह रहे कि भागवत में जितने भी चरित्र की वर्णन आती है ये भागवत संदर्भ में कहते कि ये सारे मुक्तात्मा है। भागवत में चाहे अजामिल हो या कोई भी हो, ये जो कैरेक्टर से वर्णन की गई ये सब कोई बद्धजीव नहीं है। यदि ये बद्धजीव होते हैं और उनके चरित्र का हम जन्म कर्म को श्रवण करके हम कैसे मुक्त होंगे? भागवत स्मरण करने से हम मुक्त हो जाते ना। ये सब मुक्त आत्माएं हैं, ड्रामा में एक्टिंग करने वाले हैं। भगवान कभी कभी ऐसे किसी व्यक्ति को उपयोग करते, हिरण्यकशिपु कोई मुक्तात्मा कोई बद्ध जीव थोड़ी है, नित्य मुक्त जीव है, वैकुंठ के दर्जे पर जय विजय के रूप में थे। ये लोग आके जहां ड्रामा करके इनके माध्यम से भगवान हमको सिखाते हैं, सिखाने के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद सियो धाम सह अवतरी। चैतन्य महाप्रभु लीला में छोटा हरिदास काला कृष्णदास ये सब मुक्त हो बद्ध जीव नहीं है। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, इस प्रकार भरत महाराज भी कोई बद्ध जीव नहीं है। भरत महाराज मुक्त जीव है, लेकिन उनको ऐसे अभिनय करा कि हमको सिखाना, भगवान इनको उपयोग कर रहे हैं, उनको एक माध्यम बनाकर हमको सिखाना चाहते हैं। इसी रूप में जानना चाहिए, ये नहीं कि हम बोले वो कोई समझाने के लिए कोई उपमा से दे सकता, लेकिन ऐसा कोई प्रामाणिक आचार्य कोई ऐसे टीका में नहीं लिखा है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।